आप हैं SBS हिंदी के साथ। आज के बुलेटिन में एक हानिकारक रिपोर्ट जारी होने के बाद पर्यावरण को बहाल करने के लिए फेडरल सरकार ने नए कानून बनाने का किया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के दवा नियामकों ने छोटे बच्चों के लिए एक टीके को दी अस्थाई मंजूरी और श्रीलंका में मौजूदा संकट को लेकर भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण मंत्री तानिया प्लिबसेक ने पर्यावरण की स्थिति बताने वाली रिपोर्ट को कठिन करार किया है। आज जारी की गई रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की मूल भूमि जलवायु परिवर्तन, भूमि समाशोधन, खनन और प्रदूषण सहित कारकों से क्षतिग्रस्त हो रही है। तानिया प्लिबसेक कहती हैं कि सरकार पर्यावरण को बेहतर सुरक्षा बहाल करने के लिए 2023 से नया कानून विकसित करेगी।
While it's a confronting read, Australians deserve the truth. We deserve to know that Australia has lost more mammal species to extinction than any other continent. We deserve to know that threatened communities have grown by 20% in the last 5 years, with places literally burned into endangerment by catastrophic fires.
इस बीच ग्रीन्स अधिक से अधिक जलवायु कार्यवाही और नई खनिज ईंधन परियोजनाओं का समर्थन नहीं करने का आह्वान कर रहे हैं। ग्रीन्स की प्रवक्ता सेनेटर सेरा हैंसन यंग कहती हैं कि देश टूटने की कगार पर है। पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट पिछले साल मॉरिसन की पूर्व सरकार को सौंपी गई थी और सेनेटर हैंसन यंग इस बात को आश्चर्यजनक बताती हैं कि गठबंधन ने चुनाव से पहले इसे प्रकाशित करने से इनकार किया था।
Well, this is a code red on our environment and we need urgent action now. It's an emergency. Legislative change is needed, but it needs to happen much faster. And the Greens are willing to work with the government to make sure we can get stronger outcomes as quickly as possible.
ऑस्ट्रेलिया के दवा नियामक ने छोटे बच्चों के लिए मॉडर्ना के कोविड 19 वैक्सीन को अस्थायी मंजूरी दे दी है। द थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि कनाडा और अमेरिका भर के परीक्षणों में टीका प्राप्त करने वाले 6,000 से अधिक बच्चों के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए पीडियाट्रिक खुराक को अस्थायी मंजूरी देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि इसके लिए सही प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वैक्सीन सलाहकार समूह आटागी के साथ विचार करने की भी आवश्यकता है कि क्या मॉडर्ना वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह से पारित किया जाना चाहिए। उनके अनुसार अगर आटागी मंजूरी देता है तो आपूर्ति प्राप्त करना एक अलग मुद्दा हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में इन टीकों की उपलब्धि में कमी है।
As you can imagine, there is fierce competition by countries in North America, Europe and other parts of the world to get their hands on this very limited supply. I've reported before that my department is in active negotiations right now with Moderna for Australia to secure as many doses as we possibly can from this very limited global supply.
उधर विक्टोरियन सरकार का कहना है कि राज्य के पास अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त गैस है, लेकिन एक ऊर्जा प्रदाता का कहना है कि विक्टोरिया को सर्दियों में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट की संभावना है। लॉकहार्ट एनर्जी का कहना है कि उच्च मांग और राज्य की कीमत कैप के कारण पोर्ट कैम्बल में उनकी आयोना गैस स्टोरेज फैसिलिटी से आपूर्ति में रिकॉर्ड स्तर से गिरावट आई है। उनके हिसाब से अनियोजित कोयला आधारित उत्पादन में कमी और ठंड के मौसम की वजह से मांग में वृद्धि हुई है और इसके चलते गैस की आपूर्ति और सर्दियों की चरम क्षमता पूर्वी तट पर तेजी से मुश्किल होती जा रही है। लेकिन डिप्टी प्रीमियर जेसिंटा एलन का कहना है कि विक्टोरिया एक शुद्ध गैस निर्यातक है और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा बाजार संचालक की नवीनतम सलाह ये है कि राज्य के पास पर्याप्त आपूर्ति है। श्रीलंका अगले 24 घंटों में देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वहां की संसद में नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। श्रीलंका के विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा अपने प्रतिद्वंदी डलस अलापेरुमा का समर्थन करने के लिए दौड़ से हट गए हैं और अब उम्मीदवारों में शामिल नहीं हैं। श्री प्रेमदासा ने सोशल मीडिया पर अपनी वापसी की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने ये फैसला देश के हित के लिए लिया है। उधर हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने देर रात विश्वास मत जीत लिया है। इस प्रस्ताव को लेबर विपक्ष की योजनाओं को विफल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्होंने सितंबर से पहले बोरिस जॉनसन को बाहर करने के लिए अपने दल के विश्वास मत की योजना बनाई थी। विश्वास प्रस्ताव ने 238 के मुकाबले में 349 वोटों से जीत हासिल की। श्री जॉनसन ने वोट से पहले अपनी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा,
This is one of the most dynamic governments of modern times. Not just overcoming adversity on a scale we haven't seen for centuries, but delivering throughout adversity.
उधर तमिलनाडु स्थित दलों द्वारा संकट में हस्तक्षेप करने के अनुरोध के बाद सरकार ने आज शाम श्रीलंका में मौजूदा संकट को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भारत सरकार ने आज यानी कि मंगलवार को इस बैठक को आयोजित करने का फैसला किया है। गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद श्रीलंका में होने वाले उथल पुथल की वजह से देश की तमिल आबादी की स्थिति का मुद्दा उठाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक के दौरान श्रीलंका के हालात के बारे में जानकारी देंगे। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 68 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.70 रुपये हो गई है। खेल समाचार में एक पूर्व खिलाड़ी ने रिचमंड फुटबॉल क्लब के खिलाफ नुकसान के दावे की एप्लीकेशन जीत ली है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले को पेश करने के लिए अधिक समय की मंजूरी दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि हालांकि लोगों के लिए व्यक्तिगत चोट के दावों को दर्ज करने के लिए एक समय सीमा है, टाई जेंटुक की देरी का कारण समझ में आता है और वह उचित है। जेंटुक को 2021 के अंत में मस्तिष्क की चोट का निदान किया गया था। वह 2000 और 2004 के बीच क्लब के लिए खेलते हुए ऑन फील्ड दिमागी चोट के लिए रिचमंड फुटबॉल क्लब से हार जाना चाहते हैं। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में बरसात की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 20 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक जाएगा। मेलबर्न में सुबह के कोहरे के बाद मौसम के साफ होने के आसार और यहां का न्यूनतम तापमान 1 और अधिकतम 13 डिग्री रहेगा। कैनबरा में कल आंशिक रूप से बादल रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान -1 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री। सिडनी में बरसात के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 16 डिग्री। ब्रिस्बेन में एक या दो बौछार पड़ने की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 19 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में आंधी तूफान की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 32 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।